नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत अगली हेडिंग है नातेदारी की रीतियां। जो व्यक्ति हमसे रक्त या विवाह के द्वारा संबंधित होते हैं उन सभी से हमारे व्यवहार एक जैसे नहीं होते। कुछ नातेदारों से स्थापित होने वाले संबंध सम्मान पर आधारित होते हैं तो कुछ का आधार मधुरता स्नेह अथवा परिहास होता है। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार की अनेक रीतियों के द्वारा कुछ विशेष नातेदारों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों का अपने माता पिता से आदर और सम्मान का संबंध होता है। इस कारण शिष्टता के ऐसे तरीके विकसित किए जाते हैं जिससे बच्चे अपने माता पिता अथवा वयोवृद्ध नातेदारों के प्रति सम्मान दिखा सके। जीजा साली अथवा देवर भाभी के बीच मधुरता और परिहास के संबंध होने के कारण उनके बीच व्यवहार की रीतियाँ कुछ अलग होती हैं। अनेक समूहों में व्यवहार के कुछ नियम दामाद और सास तथा बहू और ससुर के बीच कुछ दूरी बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। व्यवहार के इन सभी ढंगों को नातेदारी की रीतियाँ कहा जाता है। इनमें से कुछ रीतियों के द्वारा इनकी प्रकृति और उद्देश्यों को समझा जा सकता है। पहली हेडिंग है परिहार। शाब्दिक रूप से परिहार का अर्थ है दूर रहना अथवा बचना। इसका तात्पर्य है कि नातेदारी संबंधों के अंतर्गत परिहार एक विशेष रीति है जिसके द्वारा कुछ एक नातेदारों को एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में आने से रोका जाता है। परिहार संबंधी रीतियां कुछ विशेष नातेदारों को इस बात का निर्देश देती हैं कि वे एक दूसरे से कुछ दूर रहें, प्रत्यक्ष रूप से उनसे अंतर्क्रिया न करें और जहां तक संभव हो एक दूसरे का नाम न लें अथवा उनसे बातचीत न करें। लोवी ने युकाधिकार जनजाति में परिहार का उदाहरण देते हुए लिखा है कि इस जनजाति में बहू कभी भी अपने ससुर अथवा जेठ के चेहरे को नहीं देखती और न ही दामाद अपनी सास व ससुर को देखकर उनसे बात कर सकता है। यदि उन्हें एक दूसरे से कोई बात करना है तो पर्दा करने के बाद ही कोई बात की जा सकती है। भारतीय समाज में बहू द्वारा अपने ससुर जेठ अथवा परिवार के दूसरे बड़े सदस्यों के सामने घूंघट निकालकर बात करना परिहार का ही उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ जनजातियों में यह नियम है कि बहू अपने ससुर के सामने और दामाद अपनी सास के सामने तब तक नहीं जा सकते जब तक कि वे किसी संतान को जन्म न दे दें। विभिन्न समुदायों में परिहार से संबंधित व्यवहार की जिन रीतियों का प्रचलन होता है उन्हें तोड़ने पर व्यक्ति को अपनी पंचायत द्वारा दंडित किया जाता है। भारत की भील जनजाति में बहू और ससुर के बीच इतनी अधिक दूरी रखी जाती है कि साधारणतया बिना किसी मध्यस्थ के वे आपस में कोई बातचीत नहीं कर सकते। अनेक समुदायों में भाई बहन के बीच भी परिहार संबंधी रीतियां प्रचलित होती हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका की बिडयायड जनजाति में यह नियम है कि सगे भाई बहन भी न तो एक ही छप्पर में साथ साथ सो सकते हैं और न ही साथ साथ भोजन कर सकते हैं। नातेदारी संबंधों को मधुर और नैतिक बनाने में परिहार संबंधी रीतियों का विशेष महत्व है। वास्तव में ऐसी रीतियों का विकास अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पहला, फ्रेजर ने लिखा है कि परिहार संबंधी रीतियों का उद्देश्य कुछ निकट संबंधियों के बीच अनैतिक संबंधों की संभावना को समाप्त करना है। दूसरा, लोवी ने लिखा है कि इन रीतियों का उद्देश्य दो भिन्न संस्कृतियों से संबंधित व्यक्तियों और परिवारों के बीच किसी भी तरह के तनाव को रोकना है। उदाहरण के लिए बहू और उनके ससुर के परिवार की संस्कृति एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। इसी तरह दामाद और उसके सास ससुर के परिवार की सांस्कृतिक विशेषताएं एक दूसरे से अलग होती हैं। परिहार संबंधी रीतियों के द्वारा कुछ समय के लिए उनके बीच दूरी बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है जिससे उन्हें अपने विचारों में समानता लाने के लिए कुछ समय मिल सके। तीसरा कारण यह है कि नातेदारी रीतियां कुछ विशेष नातेदारों के बीच द्वेष और ईर्ष्या को पनपने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए बहू और ससुर के बीच इस कारण दूरी रखी जाती है जिससे ससुर की पुत्रियां अपनी भाभी से ईर्ष्या न करने लगे अथवा उनमें अपने पहले के अधिकारों से वंचित होने की भावना न पैदा हो सके। चौथा, परिहार संबंधी रीतियों का एक अन्य कारण विभिन्न नातेदारों के बीच आदर सम्मान और स्नेह की भावना को बढ़ाना है। पांचवा, टायलर ने लिखा है कि आरंभिक परिवार मातृसत्तात्मक थे। इन परिवारों में स्त्रियों की प्रधानता होने के कारण जब किसी लड़की का पति अपनी सास के घर आकर रहता था तो उसे एक अपरिचित और बाहर का व्यक्ति समझने के कारण दामाद और सास के बीच परिहार संबंधी रीतियों का प्रचलन हो गया। स्पष्ट है कि परिहार संबंधी रीतियों की प्रकृति विभिन्न समुदायों में एक दूसरे से भिन्न है तथा इसके कारण भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दूसरी हेडिंग है परिहास संबंध। प्रयास संबंध को स्पष्ट करते हुए ब्राउन ने लिखा है, प्रयास संबंध दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाला वह संबंध है जिसमें एक पक्ष को प्रथा द्वारा यह छूट दी जाती है और कभी कभी दोनों पक्षों से यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से हंसी मजाक करें, उन्हें तंग करें, लेकिन दूसरा पक्ष उसका कुछ भी बुरा ना माने। परिहार की रीत से भिन्न प्रयास संबंध कुछ नातेदारों को एक दूसरे से निकट संपर्क में रहने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी, मामा भांजा, चाचा भतीजा तथा दादी पोता आदि अनेक ऐसे संबंध हैं जिनमें हंसी मजाक के संबंधों की प्रधानता होती है तथा दोनों में से प्रत्येक पक्ष से यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे की बात का बुरा न माने। भारत की अनेक जनजातियों और सरल समाजों में जीजा या साली को एक दूसरे को परेशान करने, उनकी हंसी बनाने का तथा व्यंग बनाने की छूट दी जाती है। मैनेशिया की अनेक जनजातियों में भतीजे का यह अधिकार है कि वह अपने चाचा की संपत्ति का जिस तरह चाहे उस तरह उपयोग कर सकता है, लेकिन चाचा को उसे ऐसा करने से रोकने का अधिकार नहीं होता। अफ्रीका की सोंगा जनजाति में यदि कोई भांजा भोजन के समय अपने मामा से पहले घर पहुंचकर पूरा खाना खा ले तो मामा को इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़े। कुछ विशेष त्योहारों और समारोहों के अवसर पर प्रयास संबंधों की छूट और अधिक बढ़ जाती है। नातेदारी की रीतियों में प्रयास संबंधों को विकसित करने के भी अनेक कारण हैं। इनका पहला कारण कुछ विशेष नातेदारों के बीच स्नेहपूर्ण सामाजिक संबंधों को विकसित करना है। इन्हीं संबंधों के द्वारा किसी समूह में एक मधुर वातावरण विकसित होता है। दूसरा कारण उन व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ाना है जिनके बीच या तो विवाह संबंध स्थापित होने की संभावना हो सकती है अथवा जिन्हें किसी व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। प्रयास संबंधों के द्वारा विवाह या संपत्ति को लेकर उनके बीच कोई तनाव पैदा नहीं होता। ब्राउन ने तीसरे कारण से स्पष्ट किया है कि ऐसे संबंध मित्रता और सहयोग का आधार है। इसी कारण सरल समाजों में प्रयास संबंधों के द्वारा विभिन्न नातेदारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करके सामाजिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाने का प्रयास किया गया है। तीसरी हेडिंग है मातुल्य। जिन समाजों में पिता की तुलना में माता के अधिकारों और शक्ति की प्रधानता होती है उनमें मातुल्य के रूप में नातेदारी की एक विशेष रीति का प्रचलन देखने को मिलता है। मातुल्य व्यवहार का वह तरीका है जिसमें किसी स्त्री की संतानें पिता की तुलना में अपने मामा से अधिक संबंधित रहती है। फलस्वरूप बच्चों का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने नातेदारों में अपनी माता के भाई अर्थात मामा को सबसे अधिक आदर दें, मामा के प्रति अधिक से अधिक कर्तव्यों को पूरा करें तथा कोई भी महत्वपूर्ण काम मामा की अनुमति के बिना न करें। दूसरी ओर मामा से भी यह आशा की जाती है कि वह अपने भांजे के पालन पोषण और शिक्षा में सबसे अधिक रुचि ले तथा अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी उसी को बनाए। मामा के पुत्र को मिलने वाला प्रशिक्षण और संपत्ति अधिकार स्वयं अपने मामा से प्राप्त होता है। प्रुवियंड द्वीप की जनजातियों में एक लड़का 10-12 वर्ष की आयु से ही अपने मामा के घर चला जाता है तथा उसके गोत्र का नाम पिता के गोत्र के नाम पर न होकर मामा के गोत्र के अनुसार ही चलता है। लड़के का विवाह करना मामा का ही अधिकार होता है तथा विवाह के बाद भी वह अपने मामा के परिवार का ही सदस्य बना रहता है। स्पष्ट है कि नातेदारी व्यवस्था में पिता की अपेक्षा मामा के अधिक अधिकार से संबंधित व्यवहार रीति को ही मातुल्य कहा जाता है।